Омагина Джулани Сатмана Джулани Шалаху, так что я не там и на то смешиваю голову. Свеча из Анамана Бешитам Стабида Джулани. Своя группа канала Андрева Дисмана. Я из Хешпа Чайзана. Работа Тиана. Хрея Джулани
Джулани
Свобода Рамана. Текст номер 22 так комплект кия та. 21 так. 22 language. Okay, so text number 22 we had completed. अभी तक भगवान ने तीन प्रकार के तपस्या, तीन प्रकार दान और तीन प्रकार के
यज्ञ
दवा फेंकी दो फेंकी दो प्लास्टिक में स्मेल आ रहा है। यस सो रजोगुण का दान, तमोगुण का दान, सत्वगुण का दान, भगवान कहते हैं कि दान देने की वृत्ति सब में होती है, लेकिन सभी प्रकार के दान को शास्त्र सम्मत नहीं कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति दान अगर चाकू मांगे, अगर कहे कि कोई मुझे चाकू दे दो दान में, और आप कहते हो ठीक है मेरी चाकू की फैक्ट्री है, तुम चाहो तो एक दो चाकू रख सकते हो, फिर वो छुरी का जो उपयोग किसी की हत्या करने के लिए करे, तो इसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा और छुरी की फैक्ट्री वाले को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसने दान में दिया था। उसी तरह से हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति तड़प रहा है, जैसे अहमदाबाद में तो गुजरात में तो ऐसा होता नहीं, एक बार मैं बॉम्बे में था तो बॉम्बे में एक व्यक्ति पिया हुआ था, तो भिखारी था, तो ऐसे घूमता 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 हमारे पास आया, पता पड़ जाता है देखने से पिया हुआ है, तो वो मांग रहा था हमसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाए तो और थोड़ा पी सके। तो हालांकि हमने उससे बात करने का ही अवॉइड किया, लेकिन वो मांग रहा था बार बार थोड़ा पैसा, कोई सोचेगा बेचारा कितना तड़प रहा है, इसको थोड़ा रुपया दे देना चाहिए, एक दो घूंट और मार लेगा तो ठीक हो जाएगा वो। लेकिन इस प्रकार का जो दान है वो दान का प्रेरणा भी भुगतना पड़ता है। हमने ये चर्चा भी किया था, अगर आप बड़ी बड़ी आई कैंप्स अस्पताल वगैरह सब खुलवाते हैं तो ये बड़ा रिस्की बिजनेस है। आप आई कैम्प खोलते हो लेकिन फिर आई कैम्प के माध्यम से लोग उसके उपयोग दुरुपयोग करना शुरू कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के जन कल्याण के कार्य अगर लोगों के हित के कार्य अगर हम नहीं करेंगे तो लोग इस्कॉन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? ये बात अच्छी है, ये बात सही है कि गवर्नमेंट को हेल्प हो सके, ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए इस्कॉन को, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उनके पाप के भागीदार बने। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप किसी को भूखे को प्रसाद खिलाते हो तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद खा रहे हैं। तो हर एक वस्तु में हो सके तब तक इन काइंड डोनेशन देना अच्छा है इंस्टेड ऑफ मनी। लक्ष्मी धन का उपयोग मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कर सकता है, लेकिन अगर आप उस किसी को प्रसाद देते हो, भगवद गीता देते हो, या फिर इस प्रकार से कुछ सुविधा करके देते हो, तो उसका दुरुपयोग वो कम करेगा।
यस, जैसे हम जैसे कोई व्यक्ति कुछ कुछ भी डोनेशन देता है, जैसे धन मोस्टली, तो धन का दुरुपयोग उसको पता नहीं है। जैसे कोई जैसे बहुत अच्छा है वो प्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको इसी के लिए मैं यूज ही करूँ, इसी के लिए ही यूज करूंगा, मगर वो फिर गलत करता है। जो देने वाला था उसकी कॉन्शियसनेस तो अच्छी थी, उसको पता था कि ये तो अच्छे कार्य के लिए यूज करेगा, मगर उसने वो नहीं किया तो अज्ञानता में हुआ तो भी
देन इज नॉट डिपेंड्स। अगर इसमें ऐसा है कि उस व्यक्ति ने इनको धोखा दिया था, लेकिन बात ये भी है कि आप कोई अनजान व्यक्ति पे इतना फेस भी कैसे कर सकते हो? कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपको कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करे तो आप उस पर फेस कैसे कर सकते हो? और कोई अनजान व्यक्ति आता है आपको कहता है कि आप मुझे 2-5 करोड़ रुपए दीजिए जिसका मैं उपयोग इस तरह से करूंगा, तो आपने उस पर फेस दे करके कुछ दान दे दिया, फिर उसका उपयोग उसने नहीं किया ऐसा, तो उसका तो धोखा है ही, लेकिन आपकी अज्ञानता भी है कि आपने उसको बिना सोचे समझे, बिना उस पर कोई पहचान, आप उस पर विश्वास किया। इसलिए दान देने के टाइम पे बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फिर इतना सावधान रहने से अच्छा है कि दान ही ना दो, इतना अच्छा है, क्या फायदा दान देने से, इतना सब देखना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दान का त्याग नहीं हो सकता, 18वें अध्याय में आएगा, दान का त्याग नहीं हो सकता है। अगर कोई ये कहेगा कि मैं दान करना बंद कर दूंगा क्योंकि दान में बहुत सारे झंझट है, तो वो भी वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान मना किए। दान, यज्ञ और तप, ये तीन का त्याग सन्यासियों को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी दान धन से देना, ये बुद्धि से देना, वाणी से देना, ज्ञान से देना, यह अलग बात है, लेकिन दान होना आवश्यक है, दान देना आवश्यक है। और विशेष करके जो लोग गृहस्थ आश्रम में है उनको धन से दान देना अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि इसी तरह से उसका भौतिक आकर्षण और उसकी आसक्तियां कम होगी, क्योंकि अपनी कमाई हुई जो धन होता है, संपत्ति होती है, उसके प्रति हर एक व्यक्ति आसक्त होता है, उसका एक रुपया भी वो कम नहीं सहन कर सकता, लेकिन वो आसक्ति धीरे 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 नष्ट होती है दान देने से। खुद से कमाई हुई जो धन है, राशि, आप भगवान की सेवा में देते हो, और परिणाम ये भी आता है कि दान देने वाला व्यक्ति विशेष करके सत्वगुण में या भगवान की सेवा में, ये सिद्धांत है कि दान देने वाला व्यक्ति का कभी कम नहीं होता है। अभी आपको लगेगा ये तो इमोशनल बात है या तो केवल अट्रैक्ट करने की बात है, जब दान देने वाला होता है वो हमेशा ऐसा ही बोलता है कि तुम दान दोगे तो तुम्हारा डबल होकर वापिस आएगा। कुछ लोग कहते हैं ये तो इमोशनल बात है, कोई कहेगा कि आप मंदिर बनाने के लिए धन दोगे तो आपका बोलो वृंदा में मंदिर बने, घर बनेगा आपका, तो कुछ लोग कहते हैं ये सब इमोशनल बातें हैं, वास्तव में दान लेने के ये सब तरीके हैं, लेकिन नहीं, ये बात सच नहीं है। शास्त्र में जिन जिन चीजों का प्रमाण है तो उस पर विश्वास होना चाहिए। दान देने वाला व्यक्ति उसका दान कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात अगर आपने 100 रुपया दान में दिया तो 200 आपका वापिस आएगा, ये गारंटी है। अब कैसे आएगा वो भगवान पे छोड़ दो, इसलिए दान देना चाहिए। लोग लोग बहुत ही जेनरस कर लो, कुछ लोग करते 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ ऐसे जेनरसली डोनेशन देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज जिससे दे कैन प्योरीफाई देयर मनी, उनका धन शुद्ध हो सकता है, उनकी चेतना शुद्ध हो सकती है, और एट द सेम टाइम दे आर नॉट एट लॉस, क्योंकि भगवान की सेवा में दिया हुआ धन 10 टेंस बढ़कर वापस आ जाता है। Yes.
मतलब
वो मोटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग भी नहीं होना चाहिए कि इसे लॉस फॉर मी, मेरा ये नुकसान हुआ। ये इस प्रकार से फीलिंग वाला डोनेशन वो आपके सत्व गुण में नहीं आता है, वो आपके रजोगुण तमोगुण में आता है, जिसमें था ना कि बिना इच्छा से आदर के साथ नहीं, और मन में इच्छा नहीं होने पर दान देना है। ऐसा मन में ऐसा लगता है कि ये लॉस हो रहा है मेरा, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, और फिर भी आप दान दे रहे हो, वो दान का कोई उद्देश्य नहीं है, छोड़ दो, मत करो ऐसा दान। तो ये यस,
बट फिर वो दान भगवान की सेवा में जा रहा है, मतलब देने वाले का उद्देश्य नहीं है, तो उससे भी क्या शुद्ध नहीं होगा धन?
उसका धन शुद्ध होगा, लेकिन उसकी चेतना शुद्ध नहीं हो पाएगी। भगवान की सेवा में तो धन दे रहा है, उसका परिणाम उसको प्राप्त होगा, लेकिन वो सही भाव से दान नहीं दे रहा है, क्योंकि भगवान को धन की कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धन नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, विशेष करके धन या दान लेने वाला भक्त होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को फोर्स ना करे, बल प्रयोग ना करे कि उसको दान देने के लिए बाध्य बनना पड़े, क्योंकि इससे ना उसका फायदा होगा और ना ही हमारा फायदा होगा। आपका मैक्सिमम स्कोर बढ़ जाएगा, अधिक से अधिक ये होगा कि आप टेंपल में आपके नाम का मंगला अनाउंसमेंट होगा कि इसने 5 लाख रुपए लेके आया, लेकिन वो देने वाला जो था उसने मन में संतोष नहीं था, आपको बलपूर्वक देना पड़ा। तो इस प्रकार का जो धनराशि एकत्रित करना, ये हमारे सिद्धांत के विपरीत है, और वो रजोगुण तमोगुण में चला जाता है। फिर वो कभी भी किसी व्यक्ति को धन के लिए या दान के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। डोंट फोर्स, किसी को बलपूर्वक नहीं करवाना चाहिए दान, कि तुम्हें दान करना ही पड़ेगा, इतना खर्च है। कुछ कई बार सीधा दान होता है, कई बार इनडायरेक्टली, भाई ये प्रसाद हम तुम्हें स्पॉन्सर करना है, तो करना ही पड़ेगा।
इधर सबसे अच्छी चीज ये नहीं है, मुझे कुछ पक्षों ने ये बात बहुत चर्चा होती है, तो उसमें कुछ भक्ति बताते हैं कि सबसे बेस्ट चीज है कि आप सिर्फ उनको दो, 2 साल 5 साल 10 साल, और फिर सामने से उनका जब भगवान उनको इंस्पायर करेंगे, वो सामने से इतना डोनेशन करेंगे कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
यस, लेकिन वो जो भक्त देने वाला है भगवान की ओर से, उसको थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति को दे रहा है उस व्यक्ति का मनोस्थिति भी समझने का प्रयास करें। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग केवल यूज करना चाहते हैं संस्था को, तो वो कुछ समय में पता पड़ जाता है, 1 साल 2 साल के बाद पता पड़ता है कि ये यूज करना चाहते हैं संस्था को, तो फिर उसको अधिक देने की आवश्यकता है, उसका लिमिट बना सकते हो आप, पे उसको इनवाइट करो बस प्रसाद खिलाओ, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये फंड रेजर जो डिवोटी होते हैं, इन लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी से बलपूर्वक मांगे नहीं धन, साथ में उनका कल्टिवेट करें, उनसे धन राशि मांगने से अच्छा है कि वो खुद से दे। अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि मांगने में कम मिलता है, नहीं मांगने में ज्यादा मिलता है। आप मांगोगे बोलोगे 2 लाख रुपए दो, नहीं मांगोगे तो आपको 10 लाख देगा, ये स्वाभाविक वृत्ति है लोगों की, क्योंकि आपने लिमिट बना दी कि मुझे 2 ही चाहिए, अपना लिमिट लगा दी। तो इसलिए धनराशि मांगने से अच्छा है उसको प्रेरणा दे। वो बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है इसमें। अगर मैं किसी को कहूं कि आप 16 माला जप करो तो बल बुरोगे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 16 माला का महिमा बताऊं और मैं आपको आपकी इच्छा स्वतंत्रता पर छोड़ दूं कि आप जितना उसके उतना कीजिए माला, तो क्या होगा कि आप अपने हिसाब से 16 माला तक पहुंचेंगे और उसका परिणाम क्या आएगा कि वो करते रहेंगे आप। नहीं तो क्या होगा, बलपूर्वक करने से छूट जाता है वो व्यक्ति, बाद में नहीं करना है मुझे, उसको लगता है कि ये प्रेशर है, सफोकेट होना शुरू कर देता है। तो किसी भी चीज में बल प्रयोग कृष्ण भक्ति में हो नहीं सकता। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भक्ति वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट। यू कैनॉट आस्क एनीबॉडी, यू कैनॉट फोर्स एनीबॉडी, यू मस्ट डू। देयर इज नथिंग मस्ट इन दिस, देयर आर सो मेनी मस्ट, बट दैट्स वॉलेंटरी। सो इस तरह से मैं करना चाहिए। सो कोई भी दान कोई भी देता है, दान हो, भोजन हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, ये सब में तीन गुणों का प्रभाव होता है और तीन गुणों का प्रभाव होने के कारण वो भौतिक संसार में बांध के रखता है। कोई कहता है कि नहीं देखो मैं तो रजोगुणी हूँ, तमोगुणी थोड़ी हूँ, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कहता है मैं सत्वगुणी हूँ, रजोगुणी थोड़ी हूँ, तभी भी कोई महत्वपूर्ण कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट है भगवान कहते तीन गुणों से मुक्त, ये बेस्ट है। सो अब भगवान बताते हैं आने वाले 5-6 श्लोकों में कि ये बेस्ट जो कार्य है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी तक तीन गुणों का ही डिस्क्रिप्शन हमारा था। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन डू द बेस्ट थिंग्स। टेक्स्ट नंबर 23।
सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत् ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी।
तात्पर्य बड़े ये बताया जा चुका है, तात्पर्य
यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, रजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है।
सो भगवान का दिव्य नाम प्रभुपाद इज राइटिंग फर्दर, इसमें ही है। आगे पढ़िए।
जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे बल ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान यज्ञ तप को सत्वगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत् शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येद ब्रह्मणो नेद इष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदों के उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एव सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता।
तो यहाँ पर प्रभुपाद ऐसा भी कहते हैं कि ओम तत्सत या फिर कोई भी भगवान का नाम वो तीन गुणों से पर है और वेद ग्रेजुअली ये ओम तत्सत रजोगुण तमोगुण वाला जो मार्ग है सतो तमोगुण रजोगुण सतो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है लेकिन भक्त को इस प्रकार भगवान इसको शॉर्टकट दे रहे हैं कि इसको ग्रेजुअल प्रोसेस को तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ओम तत्सत का उपयोग करके तीन गुणों से मुक्त हो सकते हो। तो इस तरह से कृष्ण का कंक्लूजन सत्वगुण वाला नहीं है। कृष्ण का जो सही में जो उनका इच्छा है वो तीन गुणों से मुक्त होने का इच्छा है। ऐसे ओम शब्द जो है वो राधा कृष्ण का उल्लेख करता है। अउमा वो भी राधा कृष्ण का उल्लेख करता है। ओम मीन्स राधा कृष्ण। तो ऐसे तत् वो आगे के श्लोक में आता है। अब टेक्स्ट नंबर 24 पढ़िए।
योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार नाम तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं।
25
मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के जल तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है।
26
परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रजापुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है।
सो भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में वो उनका इच्छा है। भगवान की इच्छा क्या है? योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। अर्थात विष्णु के चरण कमलों के प्रति समर्पण करके तात्पर्य में कहते हैं ओम तत् विष्णु परमम पदम। और 25वें श्लोक में भगवान इसके विषय में आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ दान तप पहले आया ओम। ओम किसके लिए है? विष्णु के लिए। विष्णु शब्द ओम मीन्स विष्णु। तत् का अर्थ होता है जो भव बंधन से मुक्त करता है वो सारे कार्य। हाँ यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है भगवान सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किया जाए इसको तत् कहते हैं। तत् मीन्स हिम उनके समर्पण के लिए। और लक्ष्य क्या है? सत्य लक्ष्य है। क्या है? परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। इसको आप संबंध अविधेय प्रयोजन के रूप में भी ले सकते हो। ओम मीन्स विष्णु भगवान के साथ हमारा संबंध। तत् मीन्स भक्ति की विधियां प्रोसेस जो कार्य किए जाते हैं वो। और लक्ष्य है सत् अर्थात प्रयोजन। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए समय किया उसको सत कहते हैं। सो नाउ यू के इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप। टेक्स्ट नंबर 27 का तात्पर्य
प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वो साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्तों के संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सतान प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत करते कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थ यम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है।
ओम तत्सत कार्य शब्द का मूल उद्देश्य यही है कि वो भगवान को ध्यान में रख के किए गए कार्य। जब मैं शुरू शुरू में भगवत गीता पढ़ता था तो जब मैंने पढ़ा ओम तत्सत तो मैं ऑब्वियस है कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो हर एक कार्य में ओम तत्सत वो शुरू कर दिया कि कोई भी कार्य सोचता है तो मैं सोचता हर एक कार्य की शुरुआत में ओम तत्सत पढ़ता चाहे कुछ भी हो ऐसा मैं प्रयास करा। बाद में मैंने सोचा ये तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, हर एक कार्य की शुरुआत में ओम तत्सत कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं इसका और गहराई से इसको फिर से पढ़ने का पड़ा। फिर इसका प्रभुपाद का निष्कर्ष ये निकला, मैंने उस समय ये समझा था कि कोई भी कार्य भगवान को समर्पित करके किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब केवल रिचुअल्स है, ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य है कि ये यहाँ तक कि प्रभुपाद 1950s का लेटर्स आप प्रभुपाद का देखोगे तो प्रभुपाद के लेटर्स में भी प्रभुपाद ऐसे लिखते थे ओम तत्सत। प्रभुपाद यूज्ड टू राइट ओम तत्सत एंड सो इट इज गुड। मेनी टाइम कई बार होता है भट्ट लोग ओम तत्सत शब्द का उपयोग करते हैं। सो ओम तत्सत मीन्स इट इज ऑफर्ड टू विष्णु, ये भगवान की खुशी के लिए है ओम तत्सत। तो इस तरह से सत के लिए कार्य होना चाहिए। सत का अर्थ होता है शाश्वत। सत शब्द का बहुत सारा सतान प्रसंग जैसे प्रभुपाद ने बताया, सत शब्द का अर्थ भक्त भी होता है, कार्य भी होते हैं। अर्थात सारे कार्य हमारे सत के लिए होने चाहिए, सत के लिए अर्थात भगवान या भगवान के भक्तों की खुशी के लिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारे कार्य भगवान के लिए खुशी के लिए है या भगवान के उनके भक्तों की खुशी के लिए। तो इसका आधार बड़ा आसान है कि अगर आप गुरु के आदेश को फॉलो करते हो सतान प्रसंगान मम वीर्य संविद हो, आप उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को अनुसरण करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कार्य जो है वो धीरे 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 सत के लिए होना सुधरेगा। और ये सत के लिए किए गए जो कार्य होता है उसका नाश नहीं होता, ऐसा तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था है ना, सेकंड चैप्टर में यू विल हियर ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, कि जो असत है उसका कभी अस्तित्व नहीं रहता और जो सत होता है उसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए सद्भावे साधु भावे तो इसका स्ट्रैटेजी इस तरह से होता है सद्भावे साधु भावे। तो प्रभुपाद ने इसका अर्थ बताया, क्या बताया तात्पर्य में लिखा था सद्भावे का अर्थ क्या है,
साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है।
उसके बाद उसके पहले है दोनों का डेफिनेशन।
हाँ, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है।
तो ये सद्भाव है साधु भाव है, ये भक्तों का लक्ष्य है कि साधु भाव से अर्थात साधु के रूप में सद्भाव से, सद्भाव का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वो कार्य किया जाए तो वो चरण लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को शुद्ध करता है सत से तो वो चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन फिर कुछ लोग जब हम पढ़ते हैं ये सत के विषय में तो हमें ये भी जानने का इच्छा होता है फिर असत क्या होता है, अगर ये सत है तो असत क्या है। तो वो टेक्स्ट में 28 में बताया असत क्या है। और बढ़िया
हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान यत्व के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।
तो कोई आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो, कुछ भी करो, वो भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए, अन्यथा वो भौतिक संसार में आपको बांध के रखता है। कोई भी कार्य वो बांध के रखता है, इसलिए हमें इस प्रकार की जो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसको छोड़ देना चाहिए। अभी के युग में पॉसिबल नहीं है वो, सत्वगुण में रजोगुण में तमोगुण में एक एक करके जाना। और हमें ये बनियन ट्री से हमने चर्चा किया था शुरू, तो बनियन ट्री में जितना कम समय रहे इतना अच्छा है। इस बनियन ट्री में से हमें निकलने के लिए अगर कोई शॉर्टकट मिल जाता है तो वो ले लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ये शॉर्टकट दे रहे हैं कि ओम तत्सत या मेरे लिए कर्म करो, देन यू आर सक्सेसफुल। सो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इसके विषय में, एनीथिंग डन विदाउट ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्टिव, वही तात्पर्य शुरू होता है।
चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना झाड़ू पक्षे के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनावृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान ने श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेश पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनावृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है।
आगे
बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि सदुगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है।
सो भगवान कहते हैं, प्रपत अर्पण में कहते हैं कि श्रद्धा से सुनना चाहिए, गुरु के माध्यम से श्रद्धा से सुनना चाहिए। ये सुनने की विधि श्रद्धा से इतनी पावरफुल है कि जिसमें आपको समगुण से रजोगुण, रजोगुण सत्वगुण ये सब को आप स्किप कर सकते हो केवल श्रद्धा से सुनने से। और कृष्ण भक्ति बहुत ही आसान है अगर कोई सुनता है, केवल सुनता है, नथिंग एल्स, जस्ट ये सुनता है, सुनता है और सुनता है और सुनता है। केवल सुनने से ही वो उजागर हो जाता है, कृष्ण भक्ति ऑटोमेटिकली उजागर हो जाती है। तो अधिक सुनना है, लगता है इतना आसान, लेकिन प्रभुपाद फिर भी कहते हैं कि स्टिल पीपल कैन नॉट डू इट, इट्स सो इजी, जस्ट टू हियर, नथिंग एल्स, सुनना है, अधिक से अधिक सुनना है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भक्तों से, शुद्ध भक्तों से या आध्यात्मिक गुरु से सुनना है। जितना अधिक सुनेंगे, सुनने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसका आप पालन नहीं करते, सुनने का अर्थ होता है कि आप जो सुनते हो उसका पालन करो। फिर आप कुछ लोग कहते हैं कि हम पालन नहीं कर पाते, सुनते तो है लेकिन पालन नहीं कर पाते, और सुनो, फिर से सुनो, नहीं फिर भी नहीं हो रहा है। नहीं, अगर कोई कहेगा आपको कि प्रभु जी आप एक पैराग्राफ ये पढ़ लीजिए, नहीं कर रहे हो, फिर से कहेगा आप पढ़ लीजिए, 10 बार कहेगा तो आप क्या कहेंगे, ठीक है पढ़ लेता हूँ, ठीक रहेगा। सो सो बाय मोर हियरिंग, अधिक सुनते हैं तो आप अधिक कन्विंस होते हैं उस बात को लेकर के। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करना चाहिए. सो दिस वे वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर. सो एनी क्वेश्चन इन दिस लास्ट टॉकस? यस.
श्रद्धा तो होती है. भगवान ने यहाँ बताया श्रद्धा के रहित जो है वो असत है. उसमें वो उनकी श्रद्धा देवता हो जाता है. उसको कैसे?
वो अधिकतर रजोगुण तमोगुण में आते हैं. श्रद्धा ऐसे तो अगर ये श्लोक अगर तमोगुण से मेल खाता है कहीं बात देखोगे तो तमोगुण से मेल खाता है. कि तमोगुण में भी इसी प्रकार की बात हो रही है ना कि श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ करता है, श्रद्धा के बिना कोई तप करता है तो तमोगुण में चला जाता है. लेकिन यहाँ मूल संदेश ये है कोई व्यक्ति दान तप और यज्ञ ये कोई भी भगवान में श्रद्धा से बिना श्रद्धा के भगवान में श्रद्धा नहीं होकर के करता है, चाहे वो किसी और में श्रद्धा हो या ना हो, तो इसका परिणाम वो असत हो जाता है. यूजलेस फॉर बोथ इन दिस एंड नेक्स्ट लाइफ. यहाँ पर वेरी क्लियरली मेंशन किया है कि विदाउट फेथ इन द सुप्रीम एंड नो डेमिगॉड्स आर सुप्रीम.
सो विष्णु का प्रिय कृष्ण को ना मानकर
उनमें फेथ नहीं होकर के आप चाहे कितना दान तप यज्ञ करोगे आपको ये असत के कैटेगरी में आ जाता है.
कोई बोलते है कि हम कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम इनको मानते हैं.
हाँ तो वो ठीक है, वो अपना वो मानना नहीं मानना वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है. लेकिन वो सच में नहीं आते. वो असत में
किसी को हम बताना है ये रेफरेंस है तो ये कैन बी कोट दिस पर्टिकुलर दोनों जनों में उसको कोई फायदा नहीं होगा मटेरियल बेनिफिट से मिलेगा.
लेकिन उसका रियल बेनिफिट कोई नहीं है. अब मटेरियल बेनिफिट लोग अगर आप ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे भी हम तो मटेरियल बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, हमें तो स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए ही नहीं. लेकिन समझ लो कि आप आगे जाके डेड एंड है और आपके कार में कितना भी लग्जरी ऐड कर दो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में बहुत सारे एसी भी डलवा दो, ये भी डलवा दो, अच्छे जंपर डाल दो, कितना भी लग्जरी ऐड कर दो, लेकिन आगे ये डेड एंड गाड़ी का है तो कितना भी लग्जरी इंप्रूव करने से फायदा क्या? ये तो बिल्कुल उस प्रकार का है कि बलि में चढ़ाने वाले जो पशु होते हैं उसको नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर उससे अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन आगे जाके तो उसका गला कटने ही वाला है, तो वो तो मूर्खता होगी ना. अगर कोई कहेगा कि मुझे जेल से बाहर नहीं निकलना, कम बस मेरे जो प्रिजन हाउस का मेरा जो कमरा है उसमें एक टीवी लगवा दो बस, और एक जियो का कनेक्शन दिलवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मूवीज देखता रहूंगा और शांति से शरीर त्याग करूंगा. तो ये बुद्धिमानी नहीं है. अगर आप थर्ड क्लास जेल में से सेकंड क्लास जेल में जाते हो और सेकंड क्लास जेल में से फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन जेल में जाते हो तो इससे फायदा क्या है? जेल तो जेल ही रहेगी ना. कोई कहेगा आप मेरे लोहे की रस्सी से आप मेरा लोहे का चेन से हाथ बांध दो, अगर धागे की रस्सी से हाथ बांध दो या फिर रेशम की रस्सी से हाथ बांध दो, हाथ तो बंधा ही रहेगा ना. तो द पॉइंट इज हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, नॉट हाउ टू इम्प्रूव अवर सोफिस्टिकेशन स्टैंडर्ड्स.
फेथ और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है?
कोई मेजर डिफरेंस नहीं है फेथ एंड ट्रस्ट में. डिपेंड्स करता है कि आपको किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है. बिकॉज फेथ एंड ट्रस्ट इज ऑल वेरी मच सिमिलर. फेथ मीन्स टू हैव conviction that what his Shastra is saying is right. And trust can be used for many other things also. Like, actually, कोई major difference नहीं है इसका. शास्त्र में ऐसे एक जगह पर लिखा है, I forgot that, विश्वास और श्रद्धा. उसके विषय में I forgot that point. श्रद्धा और विश्वास दो अलग अलग शब्द हैं.
तो श्रद्धा faith अलौकिक के लिए ज्यादा यूज किया जाता है.
Prabhupada has given that, I forgot that. Shraddha and Vishwas, there are two things. Shraddha and the second version two is Vishwas, as such.
This is stronger. You can do two
statements. You can say, I have faith in God, that this will be done. And the other one, I have faith in God, that this will be done. So it's all same. In a way, it's all same. But Shastra's language, उसमें इसको शायद व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ये वर्जन वन एंड वर्जन टू है. वर्जन वन मीन्स फेथ होना और विश्वास में स्ट्रांग फेथ स्टाइल में, तो वर्जन टू में आता है वो. बट आई चेक, मैं रिकन्फर्म कर दूंगा एक बार. विश्वास इज स्ट्रांग फेथ. श्रद्धा जब स्ट्रांग हो जाए तब वो विश्वास बन जाता है. इसलिए कहा गया अवश्य रक्षे कृष्ण विश्वास पालन, श्रद्धा पालन नहीं है, विश्वास पालन. शरणागति में से लेकिन श्रद्धा पहले श्रद्धा आदो श्रद्धा पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद विश्वास होता है.
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान में श्रद्धा बढ़ने से हमारा भगवान पर विश्वास बढ़ता है.
श्रद्धा बढ़ने से विश्वास बनेगा,
बनेगा
बाद में बढ़ेगा, पहले तो विश्वास बनेगा. सो मोर क्वेश्चंस एंड वी कैन हैव सो मेनी एक्सरसाइज टुडे.